29 नंबर के रजिस्टर में 19/10/89 का प्रातः क्लास पेज नंबर 76 रूहानी बाप बैठे रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं, क्योंकि आधा कल्प के बेसमझ है ना। कौन से बाप और कौन से बच्चे, समझाने वाला है रूहानी बाप और समझाता किसको है, जो बेसमझ बने हैं लेकिन रूहानी स्टेज में रहने के पुरुषार्थी। तो रोज रोज समझाना पड़ता है कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, जे अभिमानियों को नहीं समझाते हैं। पहले पहले तो मनुष्यों को शांति चाहिए, समझ में भी कब आएगा, जब पहले शांत स्वरूप होके बैठे। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, आत्माएं सब असल में रहने वाली थी शांति धाम की। बाप तो है ही सदैव शांति का सागर। अभी तुम शांति का वर्षा प्राप्त कर रहे हो, कहते हैं ना शांति देवा, देवा क्यों कहते हैं, देवा माना देने वाला देवता, अर्थात हमको इस सृष्टि से अपने घर शांति धाम में ले जाओ अथवा शांति का वर्षा दो। देवताओं के आगे अथवा शिव बाबा के आगे ये जाकर के कहते हैं कि शांति दो, क्योंकि शिव बाबा है शांति का सागर। अभी तुम शिव बाबा से शांति का वर्षा ले रहे, बाप को याद करते करते तुमको शांति धाम में जाना है जरूर। नहीं याद करेंगे तो भी जाएंगे जरूर, तो शांति का तो वर्षा मिल ही जाएगा, चाहे याद करें याद न करें, मुक्ति धाम का तो वर्षा मिल ही जाएगा। तो पर याद करने की दरकार क्या है, शांति का वर्षा तो जरूर मिलेगा। याद इसलिए करते हो कि पापों का बोझा जो सिर पर है वो खत्म हो जाए, क्योंकि सजाएं खा करके भी तो शांति धाम में जाएंगे, और जो जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद भी उनका कम हो जाएगा। तो याद इसलिए करना है कि पापों का बोझ खलास हो जाए, शांति और सुख मिलता है एक बाप से, क्योंकि वह सुख शांति का सागर है। वो चीज ही मुख्य है। कौन सी चीज, कौन सी चीज, अरे शांति और सुख मिलता है एक बाप से, क्योंकि वह सुख और शांति का सागर है। वो चीज ही मुख्य है। कौन सी चीज, शिव बाप तो चीज है, शिव बाप कोई चीज है क्या, कोई स्थूल वस्तु है क्या? चीज है तो जरूर साकार रूप में, साकार रूप धारण करके भी आता है, क्योंकि वर्षा मिलता है बाप से। बाप कोई सर्वव्यापी तो नहीं हो सकता, जरूर एक व्यापी बन करके आता है, एक में व्यापक होकर के आता है, उस एक बाप से ही सुख और शांति का वर्षा मिलता है, औरों से नहीं। शांति को मुक्ति भी कहा जाता है। और फिर जीवन मुक्ति और जीवन बंध भी है। जीवन में रहते हुए मुक्ति कैसे दुख दर्दों और फिर जीवन बंध बंधन कैसा जीवन बंधन वाला जीवन दुखों के बंधन में बंधी हुई आत्मा। अभी तुम जीवन बंध से जीवन मुक्त हो रहे हो। सचिव में कोई बंधन नहीं होता है, जाया भी जाता है सहज जीवन मुक्ति व सहज गति सदगति। ये दोनों का अर्थ तुम बच्चों ने समझा है। कौन सी दोनों बातों को? गति और सदगति। गति माना क्या? गति माना मुक्ति शांति और सदगति माना सच्ची गति। इसका मतलब शांति सच्ची गति नहीं है। शांति सच्ची गति नहीं है। जो मनुष्य चाहता है वो शांति ही सच्ची गति नहीं है क्या? मनुष्य क्या चाहता है? बस बुखार आ रहा होगा तो पहले चाहेंगे कि शांति मिले। बुखार आ रहा है अच्छे अच्छे भोजन सामने रख दिए जाए तो उन भोजनों का सुख लेगा? नहीं लेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आत्मा शांति चाहती है लेकिन वो असली गंतव्य स्थान नहीं है। आत्मा शांति तब चाहती है जब दुख बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो चाहती इन दुखों से छुटकारा मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। तो मुक्त हो जाना दुखों से माना शांत हो जाना। लेकिन इसके बाद भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए? जब शांति मिल जाए तो सुख चाहिए, तो वो ही सच्ची गति। हर मनुष्य आत्मा सुख चाहती जीवन में रहते हुए सुख, उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। कोई प्रकार का बंधन ना हो, बंधनों से ही दुख होता है। तो गति सदगति को तुम बच्चों ने समझे। गति कहा जाता है शांति धाम को और सदगति कहा जाता है सुखधाम को। सुखधाम शांति धाम और फिर ये है दुखधाम। गति किसे कहा जाता है? जब आत्मा शांत स्वरूप निसंकल्प स्टेज में शांत धाम में बैठी हुई तो जैसे चैतन्य स्वरूप है। फिर शांत में बैठना ही सब कुछ नहीं है। हर आत्मा की इच्छा है कि सुख भी भोगे और जीवन में रहते हुए सुख भोगे। तो निसंकल्प स्टेज है वो कोई संपन्न स्टेज नहीं है। निसंकल्प से भी ऊपर कहाँ पहुंचना है? सुख के संकल्पों में। तो ऐसी मन की गति बनानी है जो मन बुद्धि गतिशील भी हो और सदगति भी प्राप्त करने वाली हो। श्रेष्ठ संकल्प चले, दुष्ट संकल्प एक भी न चले। श्रेष्ठ संकल्पों में, ज्ञानी के संकल्पों में ज्ञान युक्त बुद्धि जब बनी रहे तो उसको कहेंगे गतिशील आत्मा। और सुखमय संकल्प जब चलते हैं, क्योंकि ज्ञान से ही सुख होता है, अज्ञान से दुख होता है। अब दोनों का अर्थ तुम बच्चों ने समझ लिया है। गति कहा जाता है शांति को, सुखधाम शांति धाम फिर दुखधाम। तुम यहां बैठे हो कहां? कहाँ बैठे हो? सुख धाम में बैठे हो, शांति धाम में बैठे हो कि दुख धाम में बैठे हो? धाम कौन सा है? शांति धाम में बैठे हो, दुख धाम में बैठे हो। और पुरुषार्थ क्या कर रहे हो? कहाँ जाने का? शांति धाम और सुख धाम में जाने का पुरुषार्थ करते हो। आत्माओं को अपना घर भूला हुआ है, बाप आकर के याद दिलाते हैं, समझाते हैं, रूहानी बच्चों तुम घर जा नहीं सकते हो जब तक मुझे याद नहीं करेंगे। याद से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, आत्मा पवित्र बन फिर अपने घर जाएगी। तुम बच्चे जानते हो ये अपवित्र दुनिया है, एक भी पवित्र मनुष्य नहीं है। क्या दुख धाम में एक भी पवित्र मनुष्य नहीं और सुख धाम में एक भी अपवित्र मनुष्य नहीं? पवित्र दुनिया को सतयुग, अपवित्र दुनिया को कलयुग कहा जाता है। राम राज्य और रावण राज्य, रावण राज्य से अपवित्र दुनिया स्थापन होती है। कौन से राज्य से? रावण राज्य। रावण माने रुलाना वाला राज्य, एक ऐसा राज्य हो जिसमें किसी प्रकार का प्रेशर नहीं पड़े, बंधन महसूस न हो, और एक ऐसा राज्य जिसमें जबरदस्ती काम लिया जाए, जोर जबरदस्ती की जाए। तो रावण राज्य में होता है विचारी वृत्तियों का राज्य, इससे मनुष्य रोते हैं। ये बना बनाया खेल है, ये बेहद का बाप समझाते हैं, उनको ही सत्य कहा जाता है। किनको सत्य किनको कहा जाता है? जो समझाते हैं, समझाते किसको? और बताए ना, बेसमझ होते हैं, उनको ही समझाया जाता है। सत्य बातें तुम संगम पर ही सुनते हो, फिर तुम सतयुग में आते हो। द्वापर से फिर रावण राज्य शुरू होता है। रावण अर्थात असुर ठहरा। असुर कभी सत्य नहीं बोल सकते हैं। असुर की निशानी क्या बताई? कभी सत्य नहीं बोलेंगे, इसलिए इसको कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया। आत्मा भी झूठी है तो शरीर भी झूठा है। आत्मा में संस्कार भरते हैं ना, चार धातुएं हैं खास, सोना चांदी तांबा और लोहा। जब सब खाद निकल जाती है तो बाकी जाकर के सच्चा सोना बन रह जाता है। तुम भी सच्चा सोना बनते हो इस योग बल के। तुम जब सतयुग में हो तो सच्चा सोना, अद्वैत निकलती है अग्नि से। तो ये बाप की याद भी योग अग्नि है। अग्नि में किचड़ा नहीं रह सकता। ये रूहानियत की अग्नि है। आत्मा में संस्कार भरते हैं ना। तुम जब सतयुग में हो तो सच्चा सोना, फिर चांदी की खाद पड़ती है तो चंद्रवंशी कहा जाता है, फिर तांबे की, फिर लोहे की खाद पड़ती है द्वापर कलयुग में, फिर योग से तुम्हारे में जो चांदी तांबा लोहा की खाद पड़ी हुई है वो निकल जाती है। तो पहले तो तुम सब आत्माएं शांति धाम में, फिर पहले पहले आते हो सतीगुण, तो उसको कहा जाता है गोल्डन एज, तुम सच्चा सोना हो, योग बल से सारी खाद निकल करके बाकी सच्चा सोना बचता है। शांति धाम को गोल्डन एज नहीं कहा जाता है, गोल्डन एज सिल्वर एज कॉपर एज ये कहा जाता है ना। शांति धाम में तो सिर्फ शांति है, आत्मा जब शरीर लेती है तब गोल्डन एज सिल्वर एज कॉपर एज कहा जाता है। सतयुग में तो सृष्टि ही गोल्डन एज बन जाती है, सत्व प्रधान पांच तत्व से शरीर बनता है, आत्मा सत्व प्रधान है तो शरीर भी सत्व प्रधान है, फिर पिछाड़ी में जाकर के आयरन युक्त शरीर मिलता है क्योंकि आत्मा में खाद पड़ जाती है। तो गोल्डन एज सिल्वर एज इस सृष्टि को कहा जाता है, ये सृष्टि है पांच तत्वों की बनी हुई, इस सृष्टि पर आत्मा आकर के गोल्डन एज सिल्वर एज बनती है। तो बच्चों को क्या करना है, पहले पहले शांति धाम जाना है, इसलिए बाप को याद करना है, तभी तमोप्रधान से सत्वप्रधान बन जाएंगे। इसमें टाइम उतना ही लगता है जितना टाइम बाप यहाँ रहते, आत्मा को तमोप्रधान से सत्वप्रधान बनने में कितना टाइम, ज्यादा से ज्यादा जितना समय संगम युग पर बाप रहते हैं उतना समय लगता है आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में, जितना समय रहते हैं 60-65 वर्ष। वो गोल्डन एज में पार्ट लेते नहीं है, कौन, शिव बाप। तो आत्मा को अब शरीर मिलता है तब कहा जाता है ये गोल्डन एज जीव आत्मा है, ऐसे नहीं कहेंगे गोल्डन एज आत्मा, नहीं, गोल्डन एज जीव आत्मा, जीव आत्मा मान ऐसी आत्मा जो जीवन धारण करे, फिर सिल्वर एज जीव आत्मा होती है। तो यहाँ तुम बैठे हो, तुमको शांति भी सुख भी प्राप्त होता है, तो क्या करना चाहिए, दुख धाम का संन्यास करना चाहिए, इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। उन सन्यासियों का है हद का संन्यास, वो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, उनको ये पता नहीं है कि सारी सृष्टि ही जंगल है, कांटों का जंगल, तो छोड़ के कहां भागे, इस सारी दुनिया ही कांटों का जंगल है। और वो है सतयुग फूलों की दुनिया, वो सन्यासी भल सन्यास करते हैं परंतु फिर भी कांटों की दुनिया में जंगल में शहर से दूर जाकर रहते हैं, उन्हों का है निवृत्ति मार्ग, क्या वो प्रवृत्ति मार्ग में रह नहीं सकते, और तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, तुम पवित्र जोड़ी थे और अभी अपवित्र बने, उनको गृहस्थाश्रम भी कहते हैं। सन्यासी तो आते ही बाद में है, इस्लामी बौद्ध भी बाद में आते हैं, क्रिश्चियन से कुछ पहले आते हैं। ये क्या बात हुई, सन्यासी क्रिश्चियन से पहले आते हैं बाद में आते हैं? क्रिश्चियन से पहले तो बहुत ही आते हैं, फिर ऐसे क्यों कहा कि सन्यासी तो आते ही बाद में, इस्लामी बौद्ध भी बाद में आते हैं? क्रिश्चियन से कुछ पहले आते हैं, इसका मतलब हुआ कि बौद्ध धर्म में ही सन्यास शुरू हो जाता है, तो ये झाड भी याद करना है, चक्र भी याद करना है, बाप कल्प कल्प आकर के कल्प पक्ष की नाली देते हैं, क्योंकि खुद बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, इसलिए कल्प कल्प आकर के वृक्ष का सारा राज समझाते हैं। तुम आत्मा हो परंतु तुमको ज्ञान सागर, सुख का सागर, शांति का सागर नहीं कहा जाता, ये महिमा एक ही बाप की है जो तुमको ऐसा बनाते हैं। बाप की यह महिमा सदैव के लिए है, और तुम्हारी महिमा शांति का सागर, सुख का सागर, दया का सागर, जो सागर शब्द लगाते हैं वो परमात्मा की महिमा में और आत्माओं की महिमा में क्या फर्क पड़ता है? तुमको ज्ञान सागर, सुख सागर, शांति का सागर नहीं कहा जाता, ये महिमा एक बाप की है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा नहीं रहते, आत्माएं हमेशा के लिए वो सागर का स्वरूप नहीं धारण करती, वो परमात्मा तो सदैव पवित्र है और निराकार है, सिर्फ थोड़े समय के लिए आते हैं पावन बनाने, सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं। तुम जानते हो बाप सदैव वहां ही रहते हैं, कहां रहते हैं? परमधाम में रहते हैं सदैव। सदैव का मतलब क्या होता है? हमेशा। तो फिर संगम युग में कहां रहते हैं? हाँ, सदैव वहां ही रहते हैं का मतलब यह है कि भले वो नीचे आता है लेकिन मन बुद्धि से मन शरीर में प्रवेश करता है तो भी मन बुद्धि से वो ऊंची स्टेज में रहता है, उपराम भक्ति मार्ग में सदैव उनको याद करते हैं। किनको? जब ब्रह्मा के तन में बैठ करके ये मुरली चलाएगी तो उनको क्यों कहा? भक्ति मार्ग में सदैव मेरे को याद करते हैं ऐसे क्यों नहीं कहा? हाँ, कि भविष्य में जो आने वाला पार्ट है जिस साकार स्वरूप में प्रवेश करके परमात्मा प्रत्यक्ष होता है वो ब्रह्मा का तन नहीं है, परमात्मा पार्ट के रूप में, इसलिए कहा उनको, क्योंकि ब्रह्मा के बाद शंकर का पार्ट आना, तो शंकर का जो रूप है, स्वरूप है, स्थिति है, वो साकार स्वरूप में रहते हुए भी ऊंच स्टेज वाला निराकारी स्टेज है, तो यहाँ उनको कहा। तो भक्ति मार्ग में सदैव उनको याद करते हैं, सतयुग में तो याद करने की दरकार ही नहीं रहती। रावण राज्य में तुम्हारा चिल्लाना शुरू होता है तो फिर अंत में वो ही आकर के शांति देते हैं, तो फिर जरूर अशांति में उनकी याद आती है। बात समझाते हैं, हर 5-4 वर्ष बाद में आता हूं, आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख, आधा कल्प के बाद ही रावण राज शुरू होता है। इसमें पहले नंबर की भूल है देह अभिमान। रावण राज शुरू होता है तो पहली पहली भूल कौन सी होती है? अपन को क्या समझते हैं? देह समझने लग पड़ते हैं, क्योंकि 21 जन्म देह के सुख भोगे हैं स्वर्ग में, तो देह के सुख भोगते भोगते देह समझने लग पड़े, उसके बाद फिर और विकार आ गए। सब विकारों का बाप कौन हुआ? देह अभिमान। जब बाप समझाते हैं तो फिर सबको समझना पड़ता है। बाप समझाते हैं अपन को आत्म समझो, देही अभिमानी बनो, आत्मा की भी पहचान चाहिए। मनुष्य तो सिर्फ कहते हैं आत्मा प्रकृति के बीच चमकती है। अभी तुम समझते हो वो है अकाल मूर्त। कौन वो है अकाल मूर्त? ब्रह्मा के तन में बैठे ऐसे क्यों बोला वो है अकाल मूर्त? अकाल मूर्त का मतलब क्या है? जिसको काल खा ना सके, काल माना। यहाँ ज्ञान में तो चलते हैं, बहुतों को आज ज्ञान में चलते हैं कल कहाँ हो जाते हैं। आज कहते हैं हम बाप के बच्चे हैं, कल कहते हैं बाप तो हमारे अंदर बैठा हुआ है। बाप कोई है ही नहीं, हम खुद ही बाप हैं। हमारे अंदर बाप, तुम्हारे अंदर बाप, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, हमें दिखाई पड़ता। तो ऐसे नहीं, अकाल मूर्त का मतलब क्या है? जो इतना निश्चय बुद्धि हो कि कैसा भी काल आ जाए, कैसा भी समय आ जाए, उसके निश्चय को हिला ना सके। अभी तो क्या होता है, आज निश्चय पत्र लिख करके देंगे कागज में, वीरेंद्र देव दीक्षित तो कमला देवी हमारी अम्मा है और बाप है, और कल क्या कहें तो हम कोई बात नहीं मानेंगे। बाप है, अम्मा है, बात कोई नहीं मानेंगे। जब कोई बात नहीं माना जाएगा तो बच्चा घर में रह सकता है? नहीं। कोई आया? कौन आया ऐसा कहने वाला? उठो, है तुमको क्या ऑर्डर दिया गया? ऑर्डर क्या दिया गया तो हमको सुनाओ। नहीं, नहीं, सिर्फ इतना बताओ तुमको क्या ऑर्डर दिया निश्चय पत्र देने के बाद? समर्थन नहीं,
पिता है, लेकिन माता पिता और सबके सहयोग ही।
नालायक बच्चों के सहयोग से घर नहीं चलता है। तो पहले पास मानो, पहले बच्चे बनो सही तरीके से, फिर उसके बाद आओ क्लास में। सुना तुमने? सुन लिया? ये बाप का घर है, ये धर्मशाला नहीं है। तो आप समझ लो फिर। पक्का कर लिया? क्या पक्का किया? देखो यहाँ वो जगह है जहाँ वाइब्रेशन बनाने हैं। वाइब्रेशन बिगाड़ने वाला जो है वो कभी परिवार में सहयोगी नहीं बन सकता, समझे? तो तुमको जो डायरेक्शन दिया गया पहले उसको फॉलो करो। तुम फाउंडेशन में ही तुम ऐसे अगर बन रहे हो अवज्ञाकारी, तो आगे चलकर तुम क्या बनोगे? क्या पूछ रहे हो? क्या पूछ रहे? इसमें क्या समझने की बात तुमसे कहा कि तुम्हारा ज्ञान अभी पक्का नहीं हुआ है, सर्वव्यापी वाली बात ही तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठी है। तो जब तक तुम्हारी बुद्धि में बेसिक नॉलेज नहीं बैठी है तब तक तुम इस क्लास में नहीं बैठ सकते। तो समझ लिया ही नहीं अभी? तो फिर अब क्लास में बाद में आना, जब तुम्हारी बुद्धि में पूरे बेसिक नॉलेज बैठ जाए, फिर उसके बाद तुमको अगली बार फिर दिया जाएगा एडवांस कोर्स, फिर तुम क्लास अटेंड करना। ये निश्चय पत्र तुम्हारा कैंसिल। उठो।
नहीं, वो तो घर बात सही है, लेकिन उसमें ये भी है कि बाप की बात मतलब माननी चाहिए, लेकिन बच्चा को अगर बाप निकाल भी देगा तो फिर वो
कहाँ निकाला जा रहा है? तुमको निकाला नहीं जा रहा है, तुमको सब ये कहा जा रहा है। तुम बात को
नहीं माना तब भी कुछ नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं समझ में आया तो सही
कुछ। समझो ना, समझने के बाद बैठो, पहले समझ लो बात को पूरा, फिर उसके बाद
वो आप जो कहते हैं वो बात करते हैं।
हाँ ठीक है,
ये भी एक बात है कि घर में जब हम तालमेल से नहीं करेंगे अपना
तो
करेंगे।
ये घर तो तुम्हारा बाद में बनेगा ना, पहले तो सर्वव्यापी की बात तो समझो, वो एक व्यापी है या सर्वव्यापी है?
वो एक व्यापी है।
जब एक व्यापी
होते हुए भी वो सर्वव्यापी,
तो इसीलिए तो बताया ना, जब तक सर्व जाति है तब तक
होते हुए क्योंकि वो पति जानता है, मैं उसकी नहीं जानता।
तब तक तुम नीचे बैठ करके पढ़ाई पढ़ा करो, और वो भी एक घंटे बस, भले तुम अपने घर में जाओ या ना जाओ, हमें इससे कोई मतलब नहीं।
नहीं वो बात तो सही है कि अब उसमें निकलता है कोई बात समझ में आती, चुप रहो सभी ने तो पूछा जाता है।
हाँ तो चुप रहो, भले रहो रहो न रहो,
बात है श्रीमत हमारी कह रही बिल्कुल निश्चय, हर तरह का निश्चय, निश्चय के ऊपर ही निश्चय, ऐसी बात नहीं है।
मूर्त माना साकार, मूर्त माना साकार, तो मूर्त में आ नहीं लगा हुआ है, और काल में काल के साथ आ लगा हुआ है। अकाल का मतलब ये हुआ जिसको काल नहीं खा सकता, काल से जो परे, काल के उस ऊपर जिसका कोई अधिपति नहीं हो सकता, काल जिसके ऊपर अधिपति नहीं जमा सकता, वो तो हुआ अकाल। और अमूर्त नहीं है, क्या शब्द है? अकाल मूर्त, मूर्त मानो जो साकार भी है। इसलिए एक मुरली में बोला हुआ है कि जब तक साकार नहीं बनेंगे तब तक सदगति कैसे करेंगे, क्योंकि तो सदगति तो होती है जीवन के साथ, अगर जीवन नहीं तो सदगति नहीं। उसको कहते ही सदगति को जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति माना जीवन में भी रहे और मुक्ति भी करे, तो जीवन में जो रहेगा तो जीवन में रहने वाला ही तो जीवन मुक्ति करेगा, खुद जीवन में न हो, खुद बिंदु हो और दूसरे की जीवन मुक्ति कर दे, ये हो सकता है? आप गुरु जी बैंगन खाए, दूसरे को तड़की भरी जाए, खुद गुड़ खाते हैं, चेलों के कहेंगे गुड़ नहीं खाना, खुद बीड़ी पीते हैं, चेलों के कहें बीड़ी नहीं पीना, तो चेले मानेंगे नहीं? तो परमात्मा स्वयं पहले आकर के मूर्त रूप धारण करता है, साकार रूप धारण करता है। उस अकाल मूर्त आत्मा का शक्ति शरीर है, उस अकाल मूर्त आत्मा का कितनी जगह इशारा किया है, उस अकाल मूर्त आत्मा का जिसको कोई काल खा नहीं सकता, और ब्रह्मा को तो काल खा गया ना, तो जिसको काल खा जाए, जिसका जीवन ही चला जाए, वो जीवन मुक्ति नहीं दे सकता। जो जैसा स्वयं होगा वैसा ही दूसरों को बनाएगा। तो ब्रह्मा की स्मृति में रहने वाले जो भी पुरुषार्थी है वो ही गति प्राप्त करेंगे जो ब्रह्मा की गति हुई है, दूसरी गति प्राप्त नहीं कर सकते, माना उनको भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो ब्रह्मा के जो फॉलोअर्स हैं, ब्रह्मा के रूप में जो भगवान को याद करने वाले हैं, उनकी जीवन मुक्ति हो जाए, यानी उनको जीवन में रहते हुए दुख दर्दों से मुक्ति मिल जाए और सुख प्राप्त हो जाए, ये नहीं हो सकता। उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा और अगले जन्म में जैसे ब्रह्मा की गति हुई, कृष्ण की सोल की जो गति होती है, अगले जन्म में वो भी जाकर के जीवन में रहते हुए दुख दर्दों से मुक्ति की स्टेज को प्राप्त करेंगे। तो आत्मा बैठती भ्रकुटी में है, अकाल मूर्त का ये तत्व है। सब चैतन्य अकाल तत्व है, वो तख्त नहीं जो अमृतसर में लकड़ी का गाया जाता है। क्या उन्होंने समझ लिया कोई लक्कड़ बुद्धि होगा, उस लक्कड़ बुद्धि के ऊपर बाप विराजमान होते हैं, कोई लकड़ी के तख्त पर बाप विराजमान अकाल मूर्त नहीं होता है, वो तो चैतन्य जो तख्त है प्रकृति का मध्य उस पर विराजमान होता है। बाप ने समझाया जो भी मनुष्य माते हैं सब का वो अकाल तत्व, आत्मा आकर के यहाँ विराजमान होती है, सतयुग हो या कलयुग हो, आत्मा का तत्व है ही ये मनुष्य शरीर। तो कितने अकाल तत्व हैं, अकाल तत्व कितने हुए? बाबा पूछते हैं तो जवाब भी देना चाहिए। एक बस एक होगा तो अपना मजमा नहीं बनाएगा है? तो कितने अकाल तत्व हुए है? सब अकाल तत्व हाँ 4.5 लाख जो है वो ऐसे हैं चैतन्य तत्व जो अकाल तत्व है। अकाल तत्व माने जिनको कोई काल खा नहीं सकता। तो कितने अकाल तत्व हैं? जो भी मनुष्य मात्र हैं अकाल आत्मा के तत्व हैं। तो बताओ कितने मनुष्य हुए यथार्थ में? मनुष्य किसे कहा जाता है? मनु की औलाद, मनु का बच्चा मनुष्य हुआ। मनु मन संकल्पों से ब्रह्मा ने सृष्टि रखी, तो मनन चिंतन शक्ति का जो उपयोग करता है उसको कहते हैं मनु। तो उसकी औलाद भी कैसी होगी? वो भी मनन चिंतनशील होगी। तो जो मनन चिंतनशील बनते हैं, जिनका मनन चिंतन चलता है, विचार सागर मंथन चलता है, ज्ञान की गहराइयों में जो जाते हैं, वो ही उसके बच्चे हैं मनुष्य। और बाकी सब मनुष्य में जानवर में क्या फर्क है? फर्क किस बात का है? मनुष्य मनन चिंतनशील होता है और जानवर मनन चिंतन नहीं करेगा, मन का उपयोग सदुपयोग नहीं करेगा। तो मन का जो सदुपयोग करने वाली आत्माएं हैं वो हैं सिर्फ कितनी? 4.5 लाख जो अकाल तत्व है। ये तो मनुष्य कहे जाते हैं 500, 600, 700 करोड़ भी, जो बिल्कुल लास्ट में आएंगे जब दुनिया खत्म होने वाली होगी। अभी भी आत्माएं आ रही हैं, तो वो भी मनुष्य शरीर धारण करके उनको भी कहा जाता है मनुष्य, लेकिन आए तो वो कीड़े मकोड़े। जैसे कीड़े मकोड़े जिंदा हुए और तुरंत मर गए, तो उनकी कोई जिंदगी हुई? उनमें कोई मनन चिंतनशीलता हुई? तो मनन चिंतनशील जो आत्माएं हैं वो है 500 करोड़, ऐसे नहीं है। असली मनन चिंतनशील है सिर्फ 4.5 लाख मनु की औलाद डायरेक्ट। बाकी जो उसके बाद औलाद बनेंगे वो किसकी औलाद बनेंगे? मनु की औलाद बनेंगे कि फिर जो दैवी मनुष्य होंगे उनकी औलाद बनेंगे? किसकी औलाद बनेंगे? 4.5 लाख तो है मनु की औलाद, और बाकी उसके बाद वाले वो दैवी मनुष्यों की औलाद होंगे। मनु की औलाद मनुष्य सच्चे अर्थों में नहीं होंगे। तो आत्मा एक तत्व छोड़ दूसरा लेती है, पहले छोटा तत्व होता है फिर बड़ा होता है। ये शरीर रूपी तत्व छोटा बड़ा होता है, वो लकड़ी का तत्व जिसको सिख लोग अकाल तत्व कहते हैं वो तो छोटा बड़ा नहीं होता है। क्या वो लकड़ी हमारे सर में कौन सा तत्व बनाई दिया है उन्होंने जिसके ऊपर अस्त्र रख देते हैं? वो तो लकड़ी का तत्व बनाई दिया है, वो तो एक ही जैसा रहता है, वो छोटा बड़ा नहीं होता है। ये किसको भी पता नहीं है कि सब मनुष्य मात्र अकाल तत्व हैं, आत्मा अकाल है, कब विनाश नहीं होती। आत्मा को तत्व भिन्न भिन्न मिलते हैं। सत्युग में तुमको बड़ा फर्स्ट क्लास तत्व मिलता है, उनको कहेंगे गोल्डन एज तत्व। तुम रहते हो गोल्डन एज में, फिर उस आत्मा को सिल्वर एज, कॉपर, आयरन एज तक मिलता है, फिर गोल्डन एज तक चाहिए, तो पवित्र बनना पड़ेगा तब ही मिलेगा। इसलिए बाप कहते हैं माम एकम याद करो। क्या इसलिए कहते हैं? उस अग्नि में जब तक एक ही याद की अग्नि में जब तक आत्मा नहीं पड़ी है तब तक वो संपूर्ण पवित्र नहीं बन सकती, तो तुम्हारी सारी खाद निकल जाएगी। फिर तुमको ऐसा दैवी तत्व मिलेगा। अभी ब्राह्मण कुल का तत्व है, पुरुषोत्तम संगम युग का तत्व है, फिर मुझे आत्मा को ये देवताई तत्व मिलेगा। ये बातें दुनिया के मनुष्य नहीं जानते हैं, वो तो है जंगली जानवर, क्योंकि तो कांटों का जंगल है ना। देह अभिमान में आने के बाद ही एक दो को दुख देते, इसलिए इनको दुखधाम कहा जाता है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, शांति धाम को याद करो, जो तुम्हारा असली निवास स्थान है उसको याद करो, सुखधाम को याद करो, इस दुखधाम को भूलते जाओ, इनसे बैराग। ऐसे भी नहीं सन्यासी में चल घर बार छोड़ देना। बाप समझाते हैं वो एक तरफ तो अच्छा भी है और दूसरी तरफ बुरा भी है। तुम्हारा तो अच्छा ही है, तुम तो सारी दुनिया का सन्यास करते हो बुद्धि से। उनका हठ योग अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा किस लिए है? क्योंकि भारत को थमाते हैं उस समय, इसलिए अच्छा भी है। क्योंकि देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो भारत को थमाने के लिए पवित्रता जरूर चाहिए, तो उसमें भी वो मदद करते हैं। भारत जब कब से गिरता है, हैं? द्वापर युग से। द्वापर के शुरू में भी सत्व प्रधानता होती है, इसलिए उस समय पहले 500 वर्ष तक कोई जरूरत नहीं है इतनी संन्यास की, लेकिन फिर गिरना शुरू होता है तेजी से। तो बौद्ध धर्म आता है, तो बौद्ध धर्म में भी पहले तत्व प्रधानता होती है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं बौद्ध, उनमें भी जब थोड़ा समय व्यतीत होता है, उनका जो गृहस्थ व्यवहार है वो छिन्न भिन्न होता है, तब उनमें संन्यास शुरू होता है। तो उनका भी हठ योग अच्छा है उस समय, क्योंकि भारत को थमाते हैं। देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो भारत को तो पवित्रता जरूर चाहिए, तो उसमें वो मदद करते हैं। भारत ये अविनाशी खंड है, बाप को भी आना ही यहाँ होता है। कहाँ आना होता है? अब जो अविनाशी खंड है जिसका कभी विनाश नहीं होता है। विनाश किसका होता है? जो खंड अपवित्र बनते हैं उनका विनाश होता है, और जो जो खंड ऐसा है जिसमें आदि से लेकर के अंत तक कुछ न कुछ पवित्रता रहती जरूर है, बिल्कुल नष्ट नहीं होता। द्वापर युग से बल गिरना शुरू होता है तो भी सन्यासी आ जाते हैं, और सन्यासी आकर के थमाए लेते। आजकल के सन्यासी विदेशी बन गए, विदेश में जाकर के और ही ज्यादा बेविचारी बनने लग पड़ते हैं, तो फिर तो भारत नहीं थमना चाहिए, फिर क्यों थमा हुआ? अभी तो सारा भारत जो है, सारे भारतवासी विदेशी सभ्यता को अपनाने लग पड़े, एकदम विदेशी बन गए, तो अब क्यों थमा हुआ? क्योंकि अब बाप आया हुआ है, वो तो एवर प्योर है, तो अब उन सन्यासी भी दरकार, अब नहीं दरकार। तो जहां पर बेहद का बाप आते हैं वो सबसे बड़ा तीर्थ हो गया। सर्व की सदगति बाप ही आकर के करते हैं, इसलिए भारत ही ऊंची से ऊंची देश है। इसको कहा जाता है सचखंड, सज्जू खंड बन जाता है। तीसरा, झूठ खंड को सच खंड सच्चा पापी बनाते हैं। इसका मतलब एक बाप सच्चा है तो बाकी सब क्या हुए? बाकी सब में झूठ जरूर होगा। यहाँ तो झूठ ही झूठ है, बड़े से बड़ी झूठ है कौन सी? बाप को सर्वव्यापी कहना, कुत्ते बिल्ली कण कण में कहना। कुत्ते जैसे कामियों में भी परमात्मा आता है। अगर किसी की बुद्धि में ये बैठा हुआ है ये तो कामी कुत्ता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो मानता है कि कामी कुत्ते में परमात्मा आता है? परमात्मा कामी कुत्ते में आएगा तो दुनिया वाले भक्त क्या समझते हैं? कुत्ते में भी परमात्मा है। तो ये भक्ति मार्ग में जो बात चल रही है, कहावत चल रही है, कुत्ते में बिल्ली में कणकण में परमात्मा है, ये फिर बात कहाँ की है? कैसे कैसे शूटिंग हुई है? गुरु लोगों ने कैसे शूटिंग की? क्या देख करके शूटिंग की? हाँ, उनके अंदर भी परमात्मा को व्यापक समझ लिया है, वो भी परमात्मा का स्वरूप हो जाते हैं ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में। उनकी भी मत ऐसे मानने लग पड़ते हैं जैसे भगवान की मत हो। उनको भी मंदिरों में ऐसे स्थापन कर देते हैं, ऐसे उनकी पूजा सुशूलता होती है जैसे भगवान की पूजा होती है। तो कितनी ग्लानी करते हैं। तो मूल बात बाप समझाते हैं, याद की यात्रा। गीता में भी मनमन बाबा अक्षर है ना, अक्षरी है मनमना भव, परंतु बाप कोई संस्कृत तो नहीं बोलते हैं। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो, ये थोड़े कहते हैं मनमना भव। ये संस्कृत तो अभी निकली हजार दो हजार साल से। बाप ने तो पांच चार साल पहले जो कुछ बोला था वो हिंदी में ही बोला था। बाप मनमना भव का अर्थ बैठ समझाते हैं। क्या अर्थ हुआ? तीन अक्षर हैं, मत मना भव। मत मना मेरे, मना मना मन में, भव मना समाजा। ये संस्कृत के तीन अक्षर हैं, मेरे मन में समाजा, है ना? मेरे अंदर जो संकल्प हैं, उन संकल्पों में तू अपने मन के संकल्पों को तिरोहित कर दे, समा दे। अपना संकल्प मात्र भी विरोधाभास का मत चला, ऐसे संस्कार न डाल। कैसे? कि जो पाप के विरोधी संकल्प हो उन संकल्पों को चलाने वाला न बन। आज से लेकर के पुरुषार्थ के अंत तक अगर कोई विरोधी संकल्पों वाला बना रहेगा तो अंत मते क्या होगी? अंत मते सुगति हो जाएगी, विपरीत बुद्धि विनशंति हो जाएगा। तो जो बाप का संकल्प सो बच्चे का संकल्प, तो अर्थ बैठ समझाते। देह के सब धर्म छोड़ अपन को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा किसकी बच्चा हूँ? एक परमात्मा बाप का मैं बच्चा हूँ। आत्मा अविनाशी है, वो कभी छोटी बड़ी नहीं होती, अनादि अविनाशी पार्ट भरा हुआ है आत्मा में, ड्रामा बना हुआ है। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं, उनका बहुत थोड़ा पार्ट है, बाकी टाइम शांतिधाम में रहते हैं। जो पार्ट पिछाड़ी में आने वाली आत्माओं का है तो उससे पहले कहाँ रहती हैं? शांतिधाम में। स्वर्ग में तो आ नहीं सकती। कौन से स्वर्ग की बात हुई? पिछाड़ी में जो आएंगी तो क्या सतयुग में पिछाड़ी में नहीं आती? सतयुग में भी तो दूसरे जन्म में आएंगी। तो जो एक्यूरेट स्वर्ग है जिसका लक्ष्य बाप देते हैं, सर्व संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसी दुनिया में वो आत्माएं नहीं आ रही।
पिछाड़ी को आने वाले वहाँ ही थोड़ा सुख और वहाँ ही थोड़ा सुख पाते है ना, उनको थोड़ा सुख मिलेगा तो थोड़ा सुख मिले, जैसे क्रिश्चियंस हैं, न ज्यादा सुखी होते हैं न ज्यादा दुखी होते, न ज्यादा सत्व प्रधान बनते न ज्यादा तमो प्रधान बनते। तो क्रिश्चियंस की राशि किससे मिलाई? कृष्ण से राशि मिलाई। कृष्ण की आत्मा भी न संगम युग का वो सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सुख जो है परमात्मा प्राप्ति का साकार वो नहीं भोगती, तो अति का सुख भी नहीं भोगती, तो अति का लास्ट जन्म में आकर के सुख भी नहीं भोगती। लास्ट जन्म में ऐसे नहीं कि वो बेगर बने, बेगर होता है ना, बेगर किसे कहा जाता है? जिसके पास धन पद मान मर्तबा कुछ भी ना हो, तो ब्रह्मा बाबा के जीवन में ऐसे कहेंगे? चलो बाद में तो जवाहराती बने, लेकिन उससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। तो ना वो ज्यादा नीचे गिरते हैं न ज्यादा ऊपर उठते हैं। जैसे दीपावली पर मच्छर कितने ढेर निकलते हैं, सुबह को उठकर देखो तो सब मच्छर मरे पड़े होंगे। तो लास्ट में जो आत्माएं आती हैं उनकी भी क्या गति होती है, थोड़े समय के लिए आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। माना जो सुख भोगना चाहिए आदि का वो नहीं भोग सकते, ऑलराउंड उनका पार्ट नहीं होता है। तो ऑलराउंड पार्ट किसका होता है? जो भी ऑलराउंड पार्टधारी आत्माएं होती हैं वो होती हैं हीरो हीरोइन मिसल। हीरो हीरोइन का पार्ट कैसा होता है? ऑलराउंड पार्ट। तो उनका है हीरे जैसा जीवन और बाकी का समय का है नंबर वन। तो बाप समझाते हैं ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा कैसे होता है तो समझाते हैं। सत्युग में कितने थोड़े मनुष्य और कलयुग में कितनी वृद्धि हो, झाड़ बड़ा हो जाता है। मुख्य बात बाप ने इशारा दिया है, गृहस्थ व्यवहार में रहते माँ में कम याद करो, कोई दूजम याद। एक तो गृहस्थ व्यवहार में रहो, पहली शर्त ये, और दूसरी शर्त मुझ एक को याद करो, कोई दूसरे को याद नहीं करो। 8 घंटा याद में रहने का अभ्यास करो। कोई जरूरी नहीं कि हाथ पांव बांध करके ही बैठ जाना, नहीं, कर्म करते भी मेरे को याद करो। याद करते करते आखिरी पवित्र बाप के पास चले जाते। इसका मतलब आखिर में चले जाएंगे, अभी हम बाप के पास नहीं है। अभी नहीं है संगम युग में, अभी बाप के पास नहीं अनुभव कर सकते। पास का मतलब है जैसा पुरुषार्थ बाप का है वैसा पुरुषार्थ हम बच्चों का भी उसी स्टेज का बन जाए। जिस ऊंचाई पर बाप पहुंचा हुआ है उसी ऊंचाई पर हम भी पहुंच जाए, तो कहेंगे पास नजदीक। तो पुरुषार्थ में कोई दूर होते हैं, कोई नजदीक होते हैं। तो तुम बाप के पास चले जाएंगे तो तुमको फिर स्कॉलरशिप भी मिलेगी। क्या? जो पहले बाप के पुरुषार्थ के नजदीक पहुंचेंगे उनको फिर स्कॉलरशिप भी मिलेगी। अगर पाप रह जाएंगे तो फिर जन्म लेना पड़े। क्या एडवांस पार्टी में भी शरीर जिनको छोड़ना पड़ेगा ना? जिनके भक्ति के संस्कार खलास नहीं होंगे तो भक्ति माना अज्ञान, और अज्ञान जो रह जाएगा तो पाप पूरे भस्म नहीं हो सकते, क्योंकि भक्त जो होगा वो भगवान को बाप के रूप में पहचान नहीं पाएगा कि भगवान बाप से हमको क्या मिलता है। बाप से क्या मिलेगा? बाप से तो वर्षा मिलेगा, भक्त वर्षा। भक्त वर्षा स्वर्ग का नहीं लेना चाहते, लेते नहीं। तो पाप अगर रह जाएंगे तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, सजाएं खाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। हिसाब किताब चुकू तो सबको करना है। जो भी मनुष्य मात्र हैं, अभी तक भी जन्म लेते रहते हैं। इस समय देखेंगे भारतवासियों के क्रिश्चियन धर्म ऊंचे हैं, वो फिर भी बहुत सेंसिबल है। भारतवासी तो 100% सेंसिबल थे, सो अब फिर नॉन सेंसिबल बन गए, क्योंकि यही 100% सुख पाते हैं, फिर 100% दुख भी यही पाते हैं। ये वो तो आते ही पीछे हैं, कौन? दूसरे धर्म वाले तो आते ही बाद में। बाप ने समझा है किचन डिनेस्टी का कृष्ण डिनेस्टी से कनेक्शन है। राशि क्यों मिलाते हैं? हाँ, किचन डिनेस्टी का कृष्ण की डिनेस्टी से कनेक्शन है। किचन ने राज्य छीना, किसे छीना? जो ऑलराउंड भारतवासी हैं उनसे राज्य छीना, तो यहाँ यज्ञ में भी क्या होना चाहिए? यज्ञ में भी ये शूटिंग होती है क्या? यज्ञ के आदमी क्या हुआ? कृष्ण की सोल ने जो ब्राह्मणों की संगमी दुनिया का राज्य है वो क्या किया? छीना। किससे छीना? जो ऑलराउंड भारतवासी हैं, पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं, हीरो पार्टधारी हैं, उनसे राज्य छीना। फिर क्रिश्चियन डायनेस्टी से ही हमको राज्य मिलना है, क्या होगा रिजल्ट फिर इसका? उन्होंने छीना। ऐसे नहीं तो कहा कि भारतवासियों ने पहले क्रिश्चियन से छीना। पहल किसने की? क्रिश्चियंस ने या कृष्ण ने पहल की, इसलिए मुरली में बोला है। पहले किसने आग लगाई? किसने? इसने माना किसने? इस शब्द कहते हैं तो किसकी तरफ इशारा होता है? ब्रह्मा की तरफ। पहले इसने आग लगाई, तो पहल। और अज्ञातवाणी में भी क्या बोला? यज्ञ के आज से ही स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, तो निमित्त कौन बने? और क्या? शंकर तो कहते ही हैं, तीनों जब मिक्स होते हैं तब शंकर कहा जाता है। जब तक चंद्रमा प्रवेश न करे तो शंकर कैसे? चंद्रमा तो माथे पर मुड़ पे आके बैठ जाता है, उसकी बुद्धि कोई कंट्रोल करता है? हैं, देवता धर्म की तो है, लेकिन पूरे 84 जन्म लेती है, हैं? पूरे 84 जन्म लेती है, एक दिन भी कम नहीं, 50 वर्ष उसके भी कम हो जाएंगे। क्यों? 69 के बाद उसने सही धारण किया अपना,
तो
प्रवेश तो भूत प्रेत हो गया। सब दूसरे धर्म वाले सब भूत प्रेत हैं। अभी भी गीता का भगवान कृष्ण है। सच्ची गीता है
वो, तो सच्ची कृष्ण।
हाँ, अभी सच्ची गीता की बुद्धि में ये बात बैठी नहीं है कि मेरा भगवान कौन है, पति परमेश्वर। अभी भी कृष्ण कोई पति परमेश्वर माने बैठे हैं, श्रद्धा विश्वास उसी तरफ।
कोई कार्य किया होगा तब तो श्रद्धा विश्वास नहीं
है।
कार्य किया?
क्या किया? स्वर्ग स्थापन किया?
तो फिर यही बोला,
गांधी जी मरा, स्वर्ग बना, नरक बना, और भी नरक बन गया। तो कौन से ब्रह्मा द्वारा?
कोई भी हो, फिर भी होगा।
ताड़ी मुझे वाले ब्रह्मा द्वारा? कौन से बैल द्वारा? जिस बैल के ऊपर शंकर सवारी करता है उस बैल के द्वारा कि दूसरे बैल के द्वारा? और छीना नहीं है कि क्या आदमी है? मुरली में बोला अलग को मिला अल्लाह, बे बात सारी भागीदार को दे दी।
ये भी जो मैंने बोला जो कुछ मेरा तो ले लिया, मैं जाती ना नहीं फिर हेरा फेरी करी तब
कैसे पता हेरा फेरी की। बाबा ने तो सिर्फ इतना कहा जो कुछ मिला तो ले लिया, ऐसे ही थे और थोड़ी साबित होता है उसने हेरा फेरी की।
गरीब पैसे में हेरा फेरी करी तब तो ऐसे घर में जन्म मिला।
पैसे में हेरा फेरी की इसका तो यहाँ अभी कोई कनेक्शन ही नहीं, ये बात कहाँ से पैदा हो गई? कहीं खेत की कहीं खलिहान की जो बात हो रही वो करो।
आप बोले आलिफ को मिला अल्लाह दे बस।
पंगेबाजी क्यों लेते?
हम कहाँ दे रहे हैं?
हाँ तो एक बात करो कि कृष्ण की आत्मा जो है वो किस कृष्ण की आत्मा कृष्ण से तालमेल बैठता है कि नहीं? कृष्ण की क्राइस्ट की राशि एक है कि नहीं?
आप तो दूसरों
को निग्लेक्ट करते हैं, निग्लेक्ट थोड़ा ही करते, निग्लेक्ट थोड़ा ही करते, ये बताते हैं कि क्रिश्चियन की बेबादशाही सारी भागीदार को दे दी, इसका क्या मतलब हुआ?
ये भी तो बोला जो मिला तो ले लिया, जो भी मिला बाबा कुछ नहीं बोले, ब्रह्मा वहाँ के तो संसारी थे राजा ही।
हाँ
कोई गंगा
कोई झाड़ झपट करे, कोई आक्रमण करे और डकैती डाले आके और फिर पूरा न मिले तो जो कुछ मिला तो ले लिया, जो मिला तो ले लिया। लड़ाई करने के बाद भी कोई जरूरी थोड़े ही सारा मिल जाए, सब कुछ थोड़े ये थोड़े भी तुमको विश्व की व्यवस्था 500 करोड़ के ऊपर मिल जाएगी। जो मिला तो ले लिया झाड़ झपट के है, है? चंद्रवंश चंद्रमा और सूर्य में ऊंच कौन होता है, नीच कौन होता है? चंद्रमा ऊंच होता है कि सूर्य ऊंच होता है? चंद्रमा रोशनी लेता है कि सूर्य रोशनी लेता है? चंद्रमा लेता है और देता कौन है? तो सूर्य कौन हुआ? सूर्य देवता है नमा चंद्र देवता है नमा सूर्य कौन हुआ है? देने वाला जो है वो हमेशा ऊंचा रहेगा और लेने वाला हमेशा। तो ज्ञान की रोशनी किसने ली? ये भी आसुरी पाना है कि ले भी ले और कहो कि नहीं हम ऊंचे, जैसे बदमा को रोता है ना उसी से वरदान लेगा और उसी के ऊपर हाथ रखेगा हम तुमसे ऊपर हैं। निमित्त कौन बना? वैल्यू तो निमित्त, निमित्त की वैल्यू तो होती है। शिव बाबा तो न सुख भोगता है न दुख भोगता है, सुख दुख कौन भोगता है? जो निमित्त बनता है सुख दुख देने के वो ही सुख दुख भोगता है, दूसरा थोड़ी मैं भोगेगा।
चलो आप बोल रहे हैं ना उसने छीना जब्ती की, ठीक है ये मेरी रिकॉर्डिंग हो गई छीना जब्ती की।
तो इसमें नई बात क्या है? कैसेट
में
रखो और जाकर के उन तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों को सुनाओ जाके ताकि खूब आग लगे, हम तो चाहते हैं। राज्य छीन है फिर किसी डायनेस्टी से राज्य मिलना है? राज्य भी किससे मिलना है? राज्य देने में भी कौन आगे आएंगे?